थोड़ी प्रथा पुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। फिर शत्रुओं के दमन करता हृदय के क्षेत्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। आप लोग दुराइए, हे प्रथा पुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की। तो सब लोग मेरे साथ प्रार्थना बोलेंगे। भूमिका का सबसे पहला पेज निकालिए। जिनको नहीं मिल रहा है किताब बदल लीजिए, ये वाला पेज निकालना, ये वाला आपको मिल गया। हाँ, और सबको मिल गया। मेरे साथ सब लोग बोलिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तत् कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुनवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझिए। आज का श्लोक भगवान कह रहे हैं क्लेव्यम मास में गमह पार्थ है कि हे अर्जुन कायरता को मत प्राप्त हो। नैतत्व उपपदते तुझमें ये कायरता शोभा नहीं देती। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो क्षुद्र हृदय की दुर्बलता है, त्यक्त्वा उसको त्याग कर उत्तिष्ठ खड़े हो, परम तप हे शत्रुओं के दमन करता। अब तात्पर्य में हम सुनेंगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। आपने देखा श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या नाम दिया है, अभी बात नहीं, प्रथा पुत्र। श्लोक में क्या शब्द है, श्लोक में क्या शब्द है अर्जुन के लिए, भगवान ने क्या शब्द प्रयोग किया श्लोक में, पार्थ। हाँ, पार्थ शब्द कैसे बना है, प्रथा से है? जो प्रथा का पुत्र है वो पार्थ है, ठीक है ना। और प्रथा नाम किसका है, कुंती का। कुंती का असली नाम प्रथा है, कुंती नाम तो बाद में पड़ा। आप जानते हैं कुंती किसकी पुत्री है, कुंती किसकी पुत्री है, जो पांडवों की माता कुंती है वो किसकी पुत्री है, किसके साथ क्या संबंध है कुंती के बारे में आप क्या बता सकते हैं? कृष्ण के पिताजी की बहन। कृष्ण के पिताजी कौन है, वसुदेव। वसुदेव की बहन है ना, तो फिर किसकी पुत्री है, वसुदेव के पिता की पुत्री, ठीक है ना। वसुदेव के पिता कौन है, शूरसेन है ना, शूरसेन की पुत्री है, है? कुंती। तो इसका असली नाम प्रथा है, कुंती नाम बाद में पड़ा, क्योंकि शूरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज को ये कन्या गोद में दे दी। तो कुंती भोज ने अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया इस कन्या को, प्रथा को, इसलिए इसका नाम पड़ा कुंती, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में इनका जो नाम असली नाम है कुंती का वो क्या है, प्रथा है ना। और प्रथा के जितने पुत्र हैं वो सब पार्थ हैं। तो केवल अर्जुन ही पार्थ नहीं है, है? और भी पार्थ हैं। कौन कौन पार्थ हैं, कितने पार्थ हैं, पांच, पांच नहीं है, छह, छह नहीं है, जो प्रथा के पुत्र हैं तीन, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ठीक है ना। कर्ण को कह सकते हैं लेकिन ये सब कोई नहीं जानता इस बात को। तो जो कहलाते हैं कुंती के पुत्र वो तीन हैं, है ना। पांडव पांच हैं, पांडु के पुत्र को पांडव कहते हैं, तो पांडु के पुत्र पांच हैं, लेकिन कुंती के पुत्र तीन हैं, है ना। माद्री जब अपने पति के साथ सती हो गई तो अपने दो पुत्रों को कुंती के हाथों सौंप दिया, तो कुंती ने पांचों का पालन किया, पांचों की रक्षा की, वो दूसरी बात है। लेकिन जन्म दिया केवल तीन पुत्रों को, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तो तीनों ही पार्थ हैं। तो यहां पर भगवान अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। तो इसे प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था, है? तो यहां पर भगवान अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित करके क्या बताना चाहते हैं कि तुम मेरे संबंधी हो, मतलब फुफेरे भाई, है ना, कृष्ण के फूफा के लड़के हैं, है ना, नहीं कृष्ण की बुआ के लड़के हैं, कृष्ण की बुआ के लड़के हैं अर्जुन। तो भगवान कृष्ण ये संकेत कर रहे हैं अर्जुन से कि तुम मेरे से खून से संबंधित हो, मेरे खून से संबंधित हो। भगवान का शरीर दिव्य है, तो भगवान के शरीर से संबंधित जितने लोग हैं वो सब दिव्य हैं, है? भगवान का पूरा वंश पवित्र है, जिसको कि यदुवंश कहते हैं, है ना, यदुवंश या चंद्रवंश, है? तो चूंकि कुंती का जन्म हुआ है यदुवंश में, है ना, तो इसलिए अर्जुन जो कुंती के पुत्र हैं इस कारण से विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी माता यदुवंश में पैदा हुई है कुंती देवी। तो ये भगवान समझा रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि कायरता को मत प्राप्त हो, ये तुझमें शोभा नहीं देती, ये कायरता तुझमें शोभा नहीं देती, क्योंकि तू मेरे खून से संबंधित है। हाँ, वो दूसरी बात है। तुम क्षत्रिय हो इसलिए भी कायरता शोभा नहीं देती। प्रभुपाद जी यहाँ पर विशेष बात समझाना चाहते हैं कि क्यों नहीं शोभा देती कायरता, क्योंकि भगवान से संबंधित है अर्जुन, भगवान से संबंधित है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है, क्षत्रिय। तो ये क्षत्रिय वंश बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा? चंद्रवंश, जिसमें भगवान ने जन्म लिया। चंद्रवंश में जितने भी राजा हुए हैं कभी युद्ध में पीठ दिखाने वाले नहीं हुए, या तो मारे गए युद्ध में तो सामने से मारे गए, पीठ से नहीं मारे गए, सामने से मारे गए, या तो युद्ध को जीता है या फिर युद्ध में सामने से मारे गए, भागते हुए नहीं मारे गए। कोई व्यक्ति अगर युद्ध में भाग रहा है, पीठ दिखा करके भाग रहा है, और फिर कोई अगर उसको मार दे तो इस मौत से उसको अच्छी गति नहीं प्राप्त होगी। नहीं, जब योद्धा अपनी पीठ नहीं दिखाता है और सामने से मारा जाता है युद्ध में, तो उसको अच्छी गति प्राप्त होती है, स्वर्ग की प्राप्ति। अगर भौतिक भोगों की इच्छा है तो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, है ना, और अगर उसकी मुक्ति की इच्छा है तो मुक्ति प्राप्त करेगा। लेकिन अगर युद्ध में पीठ दिखाए और फिर कोई मारे उसको पीछे से, तो उसको अच्छी गति नहीं मिलती, है ना। ज्यादातर आजकल जो है लोग ऐसे ही मारे जाते हैं, है? जब खतरा होता है भागते हैं युद्ध में, और फिर पीछे से कोई मारता है उनको गोली, है ना, तो वो जो है ना अच्छी मौत नहीं है। अच्छी मौत यही है कि सामने से योद्धा मरे, जैसे वृत्रासुर ने श्रीमद् भागवत में असुरों को बुलाया, देवताओं की शक्ति बढ़ गई और असुर हार रहे, तो असुर लोग सब भाग रहे हैं, और वृत्रासुर जो असुरों के सेनापति थे वे ही अकेले रह गए, बाकी सब असुर भाग गए। तो वृत्रासुर असुरों को बुला रहे, अरे तुम लोग क्यों भाग गए, तो बहुत अच्छा अवसर है, ऐसी मौत थोड़ी मिलती है आसानी से। दो प्रकार की मौत बड़ी दुर्लभ होती है, एक मौत तो वो है जो भगवान के भक्त हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं अपना शरीर त्यागते हैं, एक तो वो मौत है, या योगी लोग हैं अपने प्राणों को सिर के ऊपर चढ़ा करके है? और सिर को फोड़ करके जो प्राण निकालते हैं उनकी मौत अच्छी होती है, अथवा कोई योद्धा युद्ध में सामने से मारा जाए तो उसकी मौत बहुत अच्छी होती है। तो तुम लोग इतने अच्छे अवसर को क्यों खो रहे हो, क्यों भाग रहे हो, मरो सामने से मरो, है ना, वृत्रासुर ने कहा। तो इसका मतलब यह है कि क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, उसको कहते हैं छत्र बंधु। अगर कोई व्यक्ति लड़ने से डरता है तो उसको छत्र बंधु कहते हैं। छत्र बंधु शब्द बड़ा खराब होता है, वैसे लगता तो सुनने में अच्छा है लेकिन ये खराब शब्द माना जाता है, एक बहुत बड़ी गाली है। ब्रह्म बंधु जो ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन तपस्या से डरे या अशुद्ध कर्म करे, है ना, तो ब्रह्म बंधु कहलाता है, तो ये बड़ा खराब शब्द है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए, इसलिए भगवान ने क्या कहा इस श्लोक में, नैतत् त्वयि उपपद्यते, कि तुझमें ये शोभा नहीं देती, इतने उत्तम क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए हो, है ना, यदुवंश से संबंधित हो, है ना, या ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, भरत वंश में जन्म हुआ है ना, हाँ, तो इसलिए तुम्हें ये शोभा नहीं देती इस प्रकार की कायरता। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। तो प्रभुपाद जी इसमें कई कारण बतला रहे हैं, एक कारण तो प्रभुपाद ने बताया अर्जुन को यह शोभा नहीं देता कि युद्ध छोड़े, पहला कारण क्या है, भगवान के खून से संबंधित है कि नहीं, उनकी माता भगवान की बुआ है, ठीक है। इसलिए भी अर्जुन के लिए उचित नहीं है कि युद्ध को छोड़े। और दूसरा कारण क्या है? हाँ, क्षत्रिय है। दूसरा कारण है कि अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए भी युद्ध को छोड़ना उसके लिए उचित नहीं है, शोभा नहीं देता। और तीसरा कारण क्या है? कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं अर्जुन, सबसे ज्यादा मित्र हैं, खून से भी संबंधित हैं और फिर मित्रता से भी संबंधित हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, है ना। इसलिए भी अर्जुन को यह बात शोभा नहीं देती है, है ना। और फिर चौथी बात और क्या है? हाँ, कृष्ण स्वयं रथ का संचालन कर रहे हैं। सोचो, ये तो सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान स्वयं रथ चला रहे हैं, जिसका रथ चला रहे हैं, है ना। वो युद्ध करने के लिए मना करे, ये कितने सोचिए, हाँ, कितनी घटिया बात है। सही बात है, बहुत अनुचित है, है ना, कितनी घटिया बात है। जो उसी तरह से है कि जैसे कि किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में किसी को दाखिला नहीं मिलता है, प्रवेश नहीं मिलता है ना, लेकिन किसी व्यक्ति को प्रवेश मिल जाए और वो उससे उसमें ना पढ़े, ना पढ़ाई करे, तो ये बड़ी घटिया बात है। हर व्यक्ति को तो प्रवेश नहीं मिलता है ना। तो ये बहुत अच्छा अवसर है अर्जुन के लिए कि भगवान स्वयं रथ चला रहे हैं। ऐसे में अगर अर्जुन इसको मना करे तो बहुत घटिया बात है, निंदनीय है, बहुत निंदनीय है, या दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य। कितना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ कि भगवान स्वयं रथ चला रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आपकी गाड़ी चलाए और आप गाड़ी में ना बैठो, तो कितनी घटिया बात है। भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, आपकी गाड़ी चला रहा है और आपको नहीं, नहीं मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, है ना, कितनी गलत बात है, है ना। वो अपमान भी है, ये भगवान का भी अपमान है कि भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपमान भी है। जैसे कि मैं अगर आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ और आप नहीं ले रहे हैं, तो ये भी अपमान है, है ना। तो ये अपमान है। अगर मैं प्रेम पूर्वक आपको कोई चीज देता हूँ, मान लो खाने की चीज दे रहा हूँ, है ना, आप नहीं ले रहे हैं, तो क्या हुआ? अपमान हुआ, है कि नहीं। प्रीति लक्षण क्या होता है? कुछ देना हो, कुछ लेना, प्रीति लक्षण है। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में प्रीति संबंध है, और प्रीति के कारण, प्रीति के छह लक्षण है, ददाति प्रतिग्रहणाति गोयम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते च षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति कुछ देना, तो प्रीति लक्षण ये, अगर हमारे आपके बीच में कोई प्रीति लक्षण है तो कुछ हम आपको देंगे और कुछ हम आपसे लेंगे, है ना। अगर हम आपको देते हैं कुछ और आप मना करते हैं, तो वो क्या हुआ? द्वेष का लक्षण हो गया, प्रीति लक्षण नहीं है, है ना। जब कोई चीज अगर मेरे पास है, आपको नहीं मैं देता हूं, कुछ नहीं देना चाहता हूं और आपसे कुछ नहीं लेना चाहता हूं, तो सब द्वेष का लक्षण है। मेरे पास कोई चीज है, आपको मैं देता हूं, है ना, तो प्रीति लक्षण है। और कोई चीज आपसे लेता हूं, स्वीकार करता हूं, प्रीति लक्षण है। राति प्रतिग्रहणाति गोह्यम आख्याति पृच्छति, गोपनीय बात बताना, अपने दिल की बात है बताना, अपना सुख दुख जो कुछ भी है, हाँ, जो कुछ भी अपने दिल में बात हो वो बताना, ये प्रीति लक्षण है। और पृच्छति, और दिल की बात को पूछना, दिल की बात, है ना, जो भी आपके मन में दुख है या सुख है, जो भी है वो पूछना, ये भी प्रीति लक्षण है। आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते च, भुंगते माने खाना, आपसे मैं कुछ खाता हूं, मांग कर खाता हूं, आपको कुछ खिलाता हूं, तो ये प्रीति लक्षण है। षड्विधम प्रीति लक्षणम, छह प्रकार का प्रीति लक्षण है, है ना। लेकिन अर्जुन अगर युद्ध करने से मना कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो गया? प्रीति लक्षण में कमी है। इसलिए भी भगवान कह रहे हैं कि नहीं तो त्वय उपपद्यते, कि तुम्हारे अंदर ये अब शोभा नहीं दे रहा है, तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो और मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं और तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, ये क्या है? तुम्हारे व्यवहार में कमी है, मित्रता, तुम मित्रता में जो है मित्रता के संबंध में तुम कमी कर रहे हो, तो इसलिए यहां प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि शोभा नहीं देती ये कायरता, क्योंकि कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा सज्जनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। यह है यहां पर यह हृदय की दुर्बलता है, यह उदारता नहीं है। उदारता क्यों नहीं है? क्योंकि अर्जुन को युद्ध में ललकारा जा रहा है, अर्जुन को युद्ध में ललकारा जाता है, तो छत्री की उदारता यही होती है कि जब युद्ध में ललकारा जाए तो युद्ध में आए, ये उदारता है छत्री। अगर मना करता है युद्ध करने से तो ये दुर्बलता कहलाती है। अर्जुन इसको उदारता समझ रहे थे, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते कि हम इनसे युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो है सम्मान इसी बात में है कि युद्ध करें, क्योंकि वो युद्ध करने के लिए खड़े हैं भीष्म और द्रोण। हाँ, बाद में जरूर भगवद गीता का उपदेश जब समाप्त हो गया तब युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले भीष्म जी के पास गए, ये सही शिष्टाचार है। भीष्म जी के पास गए, उनको प्रणाम किया और युद्ध का विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी मांगा, और भीष्म जी ने उनको आशीर्वाद दिया। हाँ, तो ये शिष्टाचार है, युद्ध करने से मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि शत्रु के पक्ष में खड़े, इसलिए युद्ध करने से मना करना यह दुर्बलता है और युद्ध करना उदारता है। जैसे महाभारत का युद्ध, प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहला विश्व युद्ध यह है, जो आजकल का विश्व का इतिहास है उसमें महाभारत युद्ध की घटना का तो कोई विवरण ही नहीं है। लेकिन अगर 5000 साल पहले से अगर इतिहास को अगर देखा जाए तो महाभारत का युद्ध ये सबसे पहला विश्व युद्ध था, है ना? लेकिन इसके साथ साथ धर्म युद्ध भी था, क्योंकि इसमें जो अनाथ स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनकी हत्या नहीं की जाती थी, जबकि उनके पास भी बड़े बड़े जैसे आजकल नाभिकीय बम हैं, है ना, परमाणु बम हैं, तो वैसे सब हथियार उनके पास थे। लेकिन एक व्यक्ति को अगर मारना है तो एक ही व्यक्ति को वो मारते थे, इतना नियंत्रण था। लेकिन आज के जो एटम बम हैं, जो भी नाभिकीय अस्त्र हैं, उन पर ऐसा वैज्ञानिकों का नियंत्रण नहीं है, और किसी शहर में गिराते हैं तो जो अबोध जनता है, निर्दोष जनता है, उसकी हत्या होती है और लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो वो पहला विश्व युद्ध था और वो धर्म युद्ध भी था, जबकि अभी जो युद्ध हो रहे हैं वो सब अधर्म के युद्ध है, अधर्म है। एक देश है वो दूसरे देश से दुश्मनी करता है तो उसके देश में बम गिरा देता है, और बेचारे निर्दोष जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो मारे जाते हैं, वो मर जाते हैं, जो अपनी जान की रक्षा नहीं कर पाते। तो ये चीज जो है युद्ध में नहीं होना चाहिए। तो इस विश्व युद्ध में जितने भी संपूर्ण पृथ्वी भर के राजा लोग थे वो सब इसमें आए थे, क्योंकि उनको निमंत्रण दिया गया था। निमंत्रण समझते हैं, निमंत्रण जैसे किसी को शादी में निमंत्रण दिया जाए तो व्यक्ति को बड़ा सम्मान लगता है कि मेरा सम्मान हुआ निमंत्रण। इसी प्रकार से छत्री का ये सम्मान होता है, अगर कहा जाए भाई आइए इस युद्ध में, आप युद्ध में भाग लीजिए, तो छत्री बड़े सम्मान के साथ में आता है युद्ध करने के लिए। ये है ना? तो यहां पर अगर अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं तो ये क्या होगा? ये दुर्बलता है, उदारता नहीं। जो उदार क्षत्रिय है वो युद्ध करने से कभी मना नहीं करेगा। अगर वो युद्ध करने से मना करे तो वो दुर्बल क्षत्रिय कहलाएगा या छत्र बंधु कहलाएगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, अर्जुन की व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा सुजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ये तथा कथित अहिंसा है, हाँ, सो कॉल्ड नॉन वायलेंस, क्योंकि ये वास्तव में जो है अहिंसा नहीं है। अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को आप कष्ट ना पहुंचाएं, किसी व्यक्ति को आप कष्ट ना पहुंचाएं, अहिंसा का ही मतलब है। अब अर्जुन जो है युद्ध ना करके, ये जो क्षत्रिय है जिनको कि स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है, युद्ध में अगर मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा या स्वर्ग से भी ऊपर उनको गति प्राप्त होगी, है ना, उसको मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। युद्ध में बहुत अच्छा है इनको, है बहुत अच्छी गति प्राप्त होने वाली है युद्ध में, है कि नहीं? इसलिए ये जो युद्ध है ये क्या है? स्वर्ग द्वार। भगवान कहते हैं इधर छयो पिपन्नम स्वर्ग द्वारम अपामृतम, इधर छयो पिपन्नम स्वर्ग द्वारम अपामृतम सुखना क्षत्रिया पाक लभन्ते युद्धम ईदृशम। जो भाग्यशाली क्षत्रिय हैं वही इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं जो कि स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। तो ये जो क्षत्रिय इकट्ठे हुए हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, ये स्वर्ग के द्वार पर आ गए हैं, और अर्जुन क्या कर रहे हैं? युद्ध ना करके इनके स्वर्ग के द्वार को बंद कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? हिंसा हुई ना। ये ऐसा लगता ये है कि अर्जुन अहिंसा कर रहे हैं, भाई इनको नहीं मारना। लेकिन अगर शास्त्र की दृष्टि से है, शास्त्र साधु आचार्यों की दृष्टि से, भगवत गीता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये हिंसा है, हिंसा है, क्योंकि इनको स्वर्ग में अर्जुन नहीं जाने देना चाहेंगे, और ये अपने पापों के कारण ये कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो स्वर्ग से अर्जुन इनको नरक में भेज रहे हैं अगर युद्ध नहीं करें तो। और भी कोई राजा अगर कोई व्यक्ति किसी मनुष्य की हत्या करे तो राजा उस हत्यारे को फांसी पर लटका दे, मृत्युदंड दे, ये राजा का कर्तव्य है। क्योंकि इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति उस पाप से छूट जाएगा है? और नहीं तो उसको यमराज दंड देंगे नरक में, है ना। तो ऐसा लगता है कि भाई राजा ने तो हत्या की है, इस हत्यारे को प्राण दंड दिया, लेकिन वास्तव में राजा ने अहिंसा की है, क्योंकि उसको नरक में जाने से बचाया, इसलिए उसको प्राण दंड दिया। तो जिस चीज को देखा जाता है कि भाई ये बुरा है वो वास्तव में अच्छा काम है, जो काम अच्छा दिखाई दे रहा है वो वास्तव में बुरा है। अर्जुन अच्छा काम सोच रहे हैं कि भाई हम युद्ध ना करें, हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम करेंगे, हम बुरा काम नहीं करेंगे, लेकिन वास्तव में जो अच्छा काम अर्जुन सोच रहे हैं वो बुरा काम है, युद्ध को छोड़ना, है ना। जैसे कि गाय है, पानी पीने के लिए आ रही है, तालाब के किनारे, नदी के किनारे, आप उसको रोक लेते हैं, उसको पानी नहीं पीने देते हैं, तो क्या है? बुरा काम है, है कि नहीं? उसी प्रकार से इतने योद्धा इस धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में आए हैं, कुरुक्षेत्र में आए हैं, स्वर्ग जाने के लिए आए हैं, और अर्जुन उनके जो है रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, रास्ता बंद कर रहे हैं, तो ये बुरा काम है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं नेता तो ये उपदेते, है ना, ये कायरता अब तुम्हें शोभा नहीं देती। अब एक स्थान में जो पुस्तक है प्रभुपाद नेक्टर, प्रभुपाद रसामृत, उसमें एक जगह बड़ी अच्छी प्रभुपाद उपमा दी है, अर्जुन की तुलना बड़ी अच्छी प्रभुपाद ने दी है। प्रभुपाद ने कहा कि एक स्त्री है जो कि मंच पर नृत्य करने वाली है, है ना, उस जो जो जनता है, जो दर्शक हैं, बहुत से दर्शक बैठे हुए हैं उसका नृत्य देखने के लिए, लेकिन उसमें उसके कुछ संबंधी भी बैठे हुए हैं, जो भी हो उसके बड़े लोग हैं। अब वो स्त्री जो है उनको देख करके अगर शर्म करे तो ये अब उचित नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि अभी वो मंच पर है ना। तो अपने सगे संबंधियों को देख करके अब वो शर्म करे अगर, तो ये उचित नहीं है, है? और उसी प्रकार से अर्जुन की स्थिति है, एक योद्धा है, हमेशा लड़ते, उनका काम ही है, जैसे उस स्त्री का काम है हमेशा नृत्य करना, मंच में हमेशा नृत्य करती है ना। लेकिन अगर इस बार अगर उसके जो है सामने दर्शकों के बीच में अगर उसके संबंधी भी हैं तो उसे क्या करना चाहिए, क्या शर्म करना चाहिए? नहीं, शर्म नहीं करनी चाहिए। जब हमेशा वो नृत्य करती है मंच में, तो उसके जो है ना भाई हो या उसके लड़के हो या उसके पिता हो, कोई भी हो, है? उसका काम ही, उसका पेशा ही है अगर नृत्य करना, तो फिर उसको नृत्य करना है ना। तो उसी प्रकार से अर्जुन का अगर काम ही है युद्ध करना, क्षत्रिय के रूप में हमेशा युद्ध करते रहे, हमेशा युद्ध है करते रहेंगे, यही काम है, युद्ध करना ही काम है। तो अब युद्ध में अगर उसके संबंधी आए, भाई आए, पिता आए, चाचा आए, कोई भी आए, उसे अपना कर्म करना है, अब क्यों शर्म, अब क्या शर्म है ना। तो यहां पर जो शर्म है ये क्या है, वही कायरता है, ये कायरता है। तो इस तरह से जो है भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्लव्य मास में महापार्थ है नेतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। परंतप